Great. It's lovely to be here with you again in One Nation Church.
बहुत अच्छा है इस सुबह One Nation में आपके साथ इस सुबह.
This is my fourth time I've been to your church here.
और मुझे लगता है चौथी बार मैं आपके साथ यहाँ हूँ.
And each time it's a real joy and a pleasure to see what God is doing among you.
और हर समय यह आनंद की बात है यह देखते हुए कि परमेश्वर आपके बीच में क्या कर रहा है.
I bring greetings from Worthing, from Jubilee Church.
और Worthing के जुबली कलीसिया से मैं आपको भेंट लाता हूँ.
And I brought some friends with me as well this time, which is lovely.
और मैं कुछ दोस्तों को भी साथ में लाया इस समय और बहुत अच्छी बात है.
Before I share what's on my heart from the Bible.
और बाइबल से मेरे हृदय पे क्या बातें हैं वो आपको बांटने से पहले
I just want to share something I felt God say to me in the meeting.
और कुछ बातें जो परमेश्वर ने मुझे कही सभा में वो मैं आपको बताना चाहूंगा.
For this, I just need to get on the stage for a moment.
और उसके लिए मैं स्टेज पर आता हूँ.
These caught my eye.
और ये जो आईने छोटे छोटे है उन्होंने मेरे मन को खींचा वहां पर.
In the wind and with the light, they just kind of catch your eye. They just sparkle.
और ये हवा के झोंके से वो हिलते हैं और वो बिजली की रोशनी से वो चमकते हैं बस मेरी आंखें वहां पर खींची गई.
It's a very simple thing, but I felt God say that this is what you are like as a church.
और बहुत साधारण सी बात है ये लेकिन मुझे लगा परमेश्वर आपको कह रहा है कि कलीसिया आप इस प्रकार से है.
You are like a diamond.
और आप वो हीरे की तरह है.
A precious jewel that shines brightly.
और ऐसे जेवरा जो एकदम चमक उठते हैं.
And you shine in the midst of darkness.
और तुम अंधकार में वहां पर चमक उठते हो.
And it's as the light of Christ reflects off you, they see something of the beauty of Jesus.
और जैसे यीशु का प्रकाश आपसे प्रकट होता है वो कुछ सुंदर बात आप में देखते हैं.
And the whole diamond is one nation.
और यह पूरा जो हीरा है वो वन नेशन है.
And I saw it catching people's eyes in the city.
और मैंने देखा कि लोगों की आंखें वहां पर खींची जा रही है.
And they were looking and saying, "What is that light? I can see something beautiful shining."
और लोग इस प्रकार से सोच रहे थे, वो वहां पर चमक उठ रही है, क्या है वो रोशनी?
And I saw them walking to it.
और मैंने देखा उनको वो उस रोशनी की तरफ चल रहे हैं.
Particularly from the many slums you have around you in the narrow alleyways, I saw lines of people coming out and coming to you.
और खास करके मैंने देखा कि छोटी छोटी वो बस्तियां हैं और छोटी छोटी उनकी गलियों से लोग कतार लगाते हुए आ रहे हैं.
And it's important that you know as a church, you shine in the darkness.
और कलीसिया होने के नाते मैं आपको बताऊं आप उस अंधकार में चमक रहे हैं.
And it's the glory of Christ shining.
और वो यीशु की परमेश्वर की महिमा आप पर चमक रही है.
But the thing about a diamond is it's got many surfaces.
लेकिन हीरे की बात ये है कि उसको कई ऐसे पहलू होते हैं, कई ऐसे बाजुएं होती है.
And together they all make up the one diamond.
और वो सारों को मिलकर वह एक हीरा बनता है.
And each surface is you as an individual.
और हर एक उसका जो भाग है वो इस्तेमाल होता है.
And you know, you as an individual, you shine for Jesus.
और आप एक व्यक्ति होने के नाते आप यीशु के लिए चमक उठ रहे हैं.
You are a beautiful jewel in your community around you.
और आप अपने समाज में जो आपके आसपास में है वहां पर एक सुंदर ऐसा जेवरात है.
Where you live, your neighbors, you are shining brightly for Jesus in that situation.
जहां आप आपके आसपास में जहां आप रहते हो वहां आप उस रोशनी की तरह वहां चमक उठ रहे हो.
Where you work, you are shining. You are like a face of that diamond in the workplace.
और आप जहां काम भी करते हो वहां पर भी उस हीरे की तरह आप चमक उठ रहे हो.
But I felt this morning there's a number of people, and even as I'm talking, you're thinking, but I don't really shine.
जैसे मैं बात कर रहा हूँ कुछ लोग आप ऐसा महसूस करें कि नहीं मैं तो ऐसा चमक उठने वाला नहीं हूँ या मैं चमकता नहीं हूँ.
You feel, am I really?
आप पूछ रहे हो क्या मैं ऐसा हूँ?
If you feel like I don't feel I shine, I don't feel this is really me, I just want you to stand because I want to pray over you.
अगर आपको लगता है कि मैं शायद ऐसा नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता है मैं चमकने वाला हूँ, तो आप जहाँ हैं आप वहाँ खड़े हो जाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ.
Wow, look at that. Everybody shining.
और सब चमक उठने वाले हैं.
Okay, that's fine.
और अच्छा है.
This is the thing I wanted to say. I'll say it over you as you're sitting down. It's not in what you say or what you do that makes you shine.
और आप जो करते हैं या आप जो बोलते हैं वो बात आपको रोशनी या चमक नहीं देती है.
It's who you are in Christ.
लेकिन आप यीशु मसीह में कौन है वो बात आपको चमक या रोशनी देती
you
है.
You just have to be who you are.
और आपको वही होना है जैसे आप हैं.
It's not in clever words.
और बहुत सारे हुनर वाले शब्द नहीं कहना है.
It's just being who you are.
और बस आप जो है वैसे ही आप बने रहो.
And you shine for Jesus.
और यीशु के लिए चमकते रहो.
Okay.
ठीक है.
So, I'm glad it wasn't just you that clapped, Pankaj. Okay, I want to speak today from the part of the story of Israel.
और इज़राइल के कहानी से मैं आपको बताने वाला हूँ आज.
And we'll be in Numbers chapter 14.
और गिनती का 14वां अध्याय.
And just to catch you up in the story, I'll just explain a little bit.
और वो कहानी का भाग मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बताता हूँ ताकि आपको समझ आए.
Under Moses's leadership, Israel had escaped slavery in Egypt by crossing the Red Sea.
और मूसा के अगुवाई में इज़राइल के लोग जो थे वो गुलामी से मिस्र देश से बाहर आ गए और उन्होंने लाल समंदर पार किया.
And God was leading his people on a journey.
और परमेश्वर अपने लोगों को यात्रा पर ले जा रहा था.
They were on a journey from slavery to a land of freedom.
और वो ऐसी यात्रा कर रहे थे गुलामी से बाहर आकर एक स्वतंत्रता की जगह में जा रहे थे.
So when they came out of the sea, they then went to Mount Sinai, where they received the Ten Commandments.
और फिर वो समंदर से बाहर आने पार करने के बाद वो सिनाई पर्वत पर गए जहाँ पर उन्हें 10 आज्ञाएं दी गई.
And then they traveled on to the edge of the land of Canaan.
और फिर वो कनान देश की सीमा पर पहुंच गए.
It took them between 2 and 3 years.
और उसे 2 या 3 साल लगे सारी यात्रा को.
And the thing is, this land of Canaan was their destiny.
और बात यह है कि यह जो कनान देश था वहां पर उनको आकर स्थिर होना था.
It was their inheritance promised by God.
क्योंकि वहां पर वो उनके लिए विरासत या प्रतिज्ञा के बाद से उन्हें दिया गया था.
But when they come to the edge of the land, they feel like they need to send 12 spies to spy it out.
तो उस जगह में वो आने के बाद उन्हें लगा कि वो जगह को जासूसी करना है और वहां पर 12 ऐसे जासूसों को वहां भेजना है.
They just wanted to check the land out first.
और वो जो जिस भूमि में वो प्रवेश करने वाले थे उसे थोड़ा सा चेक करे ठीक बराबर है कि नहीं देखे.
And when the spies returned,
और जब वो जासूस 12 जासूस वापस लौटे,
10 of them said the land is too difficult to capture.
10 लोगों ने ऐसा रिपोर्ट दिया कि यह बहुत ही मुश्किल की भूमि है.
We can't do it, so they gave a bad report.
और हम नहीं उसे हासिल कर सकते, उन्होंने उसका बुरा रिपोर्ट दे दिया.
They said the land we explored devours those living in it. All the people we saw there are of great size. We seem like grasshoppers in their eyes.
और वो भूमि जो है वो वहाँ के लोगों को खा जाती है और वहाँ के जो लोग हैं वो काफी महामानव जैसे हैं. इस प्रकार से उन्होंने बातें बताई.
But two of the spies said something different.
लेकिन दो जो जासूस थे उन्होंने कुछ अलग बातें बताई.
Caleb and Joshua saw it differently.
कालेब और यहोशू ने अलग तरीके से देखा उसी भूमि को.
They said we can capture the land.
और उन्होंने कहा हम इस भूमि को हासिल कर सकते हैं.
So they said, let us go up at once and occupy the land.
तो उन्होंने कहा आइए हम वहां पर जाएं और उसका कब्जा कर लें.
For we are able to overcome it.
क्योंकि हम उस पर विजय पाने वाले हैं.
But Israel didn't believe Caleb and Joshua, they believed the 10 spies.
लेकिन इज़राइल के लोग थे उन्होंने कालेब और यहोशू ने जो कहा उस पर विश्वास नहीं किया बल्कि जो 10 लोगों ने बताया उस पर विश्वास किया.
So fear gripped the people and they started to grumble and moan.
और उसकी वजह से लोग डर गए और वो कुड़कुड़ाने लगे अपने आप में.
And they wanted to go back to Egypt.
और वो फिर से मिस्र देश में वापस लौटना चाहते थे.
So God passed judgment on that generation and said nobody over 20 will enter this land except Caleb and Joshua.
और इसलिए परमेश्वर ने एक प्रकार से उन पर दंड की घोषणा की, यह कहते हुए कि 20 साल से जो बड़े हैं वो उनमें से कोई भी उस वाचा के भूमि में नहीं पहुंचेंगे, नहीं जाएंगे.
So it's the next generation that inherited.
तो जो अगली पीढ़ी थी उन्होंने उस भूमि में विरासत ले ली.
If you just think about it, all 12 spies, they went in the same land, they experienced the same things, and yet they saw it very differently.
और हम देखते हैं यहाँ पर 12 जो जासूस थे उन्होंने उसी भूमि को देखा, वही चीजों को देखा, लेकिन उन्होंने देखने में फर्क किया.
Why was it? What was different about Caleb and Joshua?
और कालेब और यहोशू को लेकर क्या ऐसी खास बात थी, अलग बात थी?
And this brings me to the verse I want to share this morning. One verse.
और जो वचन जिसकी वजह से मैं संदेश देने वाला हूँ वो एक वचन में अभी बताता हूँ.
Numbers 14, verse 24.
और वो गिनती का 14वें अध्याय का 24वां वचन.
This is what it says. But my servant Caleb, because he has a different spirit and has followed me fully, I will bring him into the land into which he went, and his descendants shall possess it.
और उसमें लिखा है, परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको इस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा.
एंड इन द स्टोरी कालेब रिप्रेजेंट्स द स्पिरिट फिल्ड क्रिश्चियन.
और इस कहानी में कालेब जो है वो आत्मा से भरे हुए मसीहों को दर्शाता है.
And Canaan represents our inheritance.
और कनान देश जो है वो हमारा विरासत दिखाता है.
So this morning I want to look at three reasons why Caleb was different from the 10 spies.
तो इस सुबह मैं आपको तीन ऐसे कारण बताने वाला हूँ जिसकी वजह से कालेब अलग था बाकी लोगों से.
But we'll quickly pray first.
आइए हम पहले प्रार्थना करें.
Father, we thank you for your word.
पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए.
Thank you, you preserved it for us.
और धन्यवाद कि तूने वो हमारे लिए रखा है.
And it is there to teach and instruct us and correct us and encourage us.
और वो हमारे लिए है कि हम उसे सीखे, हम उसे अनुशासन पाए, हम उसे समझे, उपदेश पाए.
God, I pray, speak to us this morning as a church.
और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तू हमसे बात कर जैसे हम उसको सुनते हैं.
Encourage us and instruct us in this story.
और इस कहानी के द्वारा हमें उत्तेजना दे और हमें शिक्षा दे.
Jesus name.
यीशु के नाम में, आमेन.
So, the first thing I want to say is this: Caleb had a spirit of faith.
और सबसे पहले बात मैं आपको बताऊं, कालेब के पास एक विश्वास का आत्मा था.
Hebrews 11 verse 1 says this about faith.
और इब्रानियों का 11वां अध्याय का पहला वचन हमें यह बात बताता है.
Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen.
अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और मन देखी वस्तुओं का प्रमाण है.
So faith doesn't live in the physical realm.
तो विश्वास जो है वो ऐसे कोई क्षेत्र में वहां पर रखने की चीज नहीं है.
It's not about what I can see, that's not faith.
और जो मैं देख सकता हूँ वो विश्वास नहीं है.
It's seeing through the eyes of God, that's faith.
और हम जो परमेश्वर की नजर से देखते हैं वो विश्वास है.
And sometimes it's seeing circumstances differently or things that are different to what appear to my natural eyes.
और कभी-कभी स्थितियां जो है हमें अलग प्रकार से दिखाई देती है हमारे हमारे वास्तविक आंखों को या हमारी प्राकृतिक आंखों को लेकर.
You see, this land of Canaan was already theirs.
ऐसा है कि यह जो भूमि है कनान देश की वो वहाँ ही पहले से ही थी.
God had promised it to their ancestor Abraham 650 years earlier.
और अब्राहम जो उनका पूर्वज था 650 साल पहले परमेश्वर ने उसे देने का वादा किया था.
So they just had to take hold of it.
तो उनको बस उसको लेना था.
They didn't have to spy it out. They just had to take hold of it.
और बस उनको वो लेना था, उसकी जासूसी करने की वैसे आवश्यकता नहीं थी.
And the Bible says, send men to spy out the land of Canaan, which I am giving to the people of Israel. That's what God says.
लेकिन परमेश्वर ने कहा ऐसे जासूसों को वहां भेजो जो भूमि मैं तुम्हें देने वाला हूं वहां पर.
The problem is that Israel was not walking by faith.
मुश्किल ये है कि इज़राइल उस समय विश्वास में नहीं चल रहा था.
They thought maybe we need to explore the land first. Let's just make sure that we, if we fight them, we're going to win the battle.
और उन्होंने ऐसा सोचा कि चलो हम पहले देख लेते हैं वो भूमि कैसे है. हम अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा हम आगे क्या कर सकते हैं, उनको जीत ले सकते हैं.
And they were relying on their own ability to take the land by force and the promises of God.
और वो जो है अपने सामर्थ्य पर निर्भर रहने लगे, ना कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर.
And you know, when you rely on your own ability, it's very easy for the enemy to intimidate you and fill you with fear.
और जब हम अपने सामर्थ्य में पाने की या करने की कोशिश करते हैं तो शत्रु जो है हमें उकसाता है, हमें डर डालता है.
And this is what happened here.
और वैसा ही यहाँ पर हुआ.
Before a sword was raised in battle. Before a sword was raised in battle.
और युद्ध में वो तलवार ऊंची उठाने के पहले,
Israel had already been defeated in their thinking.
और इज़राइल देश जो है वो अपनी सोच में वो हार चुके थे.
Because they thought it depended on their ability.
क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो अपने बलबूते पर भरोसा करेंगे.
So therefore, this is what the 10 spies saw when they entered the land. This is what the 10 spies saw when they entered the land.
ये जो 10 जासूस थे, उन्होंने ये बातें देखी.
So when they looked at people, they saw giants.
और तो उन्होंने जब वहाँ के लोगों को देखा, तो ऐसे लगे वो महामानव बहुत बड़े लोग हैं.
When they looked at cities, they saw high walls and gates.
और जब उन्होंने शहर पर देखा, तो उनकी जो दीवारें थी, वो बहुत ऊंची ऐसे उन्होंने देखी.
And when they looked at themselves, they saw grasshoppers.
और जब उन्होंने अपने आप को देखा, तो उनको लगा कि हम तो वो टिड्डियों जैसे हैं.
That's what walking by sight does. It defeats you.
और यह जब हम आंखों देखा बातों से चलते हैं, तब हम में हार आ जाती है. ऐसा ही होता है.
Do you know, just be a bit careful what I'm about to say.
और थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, मैं कुछ खास बता रहा हूँ.
But in India, I just sense a bit of a spirit of fear.
और भारत में मुझे ज्यादा तौर पर दिखाई देता है एक डर का आत्मा.
It's fear about the political pressure and what is going to happen in the nation.
और राजनीतिक जो दबाव है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, उसका डर.
And you need to settle that it doesn't depend on your strength. You cannot prevail against political pressure.
और हमें इस बात से स्थिर हो जाना चाहिए कि हमारे सामर्थ्य में कुछ नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर की बातों से होगा.
But God can prevail.
और हमारा परमेश्वर अब भी उसे ठीक नियंत्रण में कर सकता है. उसके वादे अभी भी स्थिर है.
We trust the Lord in all these things.
और इन सारी बातों में हम प्रभु पर भरोसा करते हैं.
Amen.
Amen.
And Caleb had a different spirit.
और कालेब के पास अलग प्रकार का आत्मा था.
He was walking by faith in the promises of God.
और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में विश्वास से चल रहा था.
And so therefore he saw the land very differently to the other 10 spies.
और इसलिए उसने उसी भूमि को एक अलग नजर से देखा.
So when Caleb looked at the people and the cities,
तो जब कालेब जो है उस शहर में गया,
he saw that they were already defeated.
और उसने देखा कि वो पहले ही हारे हुए हैं.
He said their protection is removed from them.
और उसने कहा कि उनके ऊपर जो सुरक्षा थी वो निकल चुकी है.
When he looked at himself and Israel, he saw not grasshoppers, he saw God's people.
और जब उसने अपने लोगों को अपने आप पर देखा, तो उसने कहा कि हम तो परमेश्वर के लोग हैं, हम टिड्डियां नहीं हैं.
And so he said, the Lord is with us, do not fear them.
और इसलिए उसने कहा कि प्रभु हमारे साथ है, इसलिए डरो मत.
God is with you.
और परमेश्वर तुम्हारे साथ
है. You don't need to fear men.
और तुम्हें मनुष्यों को डरना नहीं है.
You're a child of God. You're in the army of God. You've already won the victory on the cross.
परमेश्वर की सेना हो और क्रूस पर हमने विजय पाया है.
Jesus is already victorious.
और यीशु पहले से ही जीत विजय पाया हुआ है.
There's an old hymn that says about the risen conquering king.
और वो पुनरुत्थान पाया हुआ, विजय पाया हुआ वो राजा है.
We're just mopping up after his victory.
और हम बस उसकी उस उसके उस विजय में हम चल रहे हैं.
Caleb believed the promises of God. Caleb believed the promises of God.
Caleb ने परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर भरोसा किया, विश्वास किया.
And so he filtered all obstacles through the eyes of faith.
और इसलिए उसने परमेश्वर के या विश्वास की नजर से सारी बातों को देखा.
And faith is simple.
और विश्वास बहुत ही साधारण है.
It's simply believing what God has said.
और बस परमेश्वर ने जो बोला है उसमें विश्वास करो.
Romans 10:17 says faith comes from hearing and hearing through the word of Christ.
रोमियों के 10 का 17वां वचन कहता है विश्वास सुनने से और परमेश्वर का वचन सुनने से आता है.
So if God has spoken, we either believe him or we don't.
अगर परमेश्वर ने कहा है कि हमें आगे जाना है तो बस जाना है.
And if you don't believe God, you allow unbelief to rob you of your inheritance here and now in this life.
अगर आप विश्वास नहीं करें और अविश्वास आपके अंदर घुस जाए तो परमेश्वर ने जो आपको विरासत दी है वो आप उसे पा नहीं पाओगे.
And it's the devil who sows seeds of doubt.
और वो शैतान है वो ऐसे शक के बीज आपके मनों में डालता है.
He tries to get you to exchange faith for unbelief.
और वो एक प्रकार से आपके विश्वास को निकाल कर आप में शक डालने का प्रयत्न करता है.
He wants to take your faith away and give you unbelief in its place.
और वो आपके अंदर के विश्वास को बाहर निकाल कर आपके अंदर शक डालना चाहता
है. But he doesn't have the power to do it. He only tries to trick you.
और उसमें ताकत नहीं है वैसा करने की, लेकिन वो आपको वैसा करके गिराना चाहता है.
He tries to get you to exchange your inheritance for a defeat.
और वो चाहता है कि आपका जो विरासत है उसके बदले आपके अंदर हार आ जाए.
You have an inheritance in God.
आपको परमेश्वर में विरासत रखी है.
The enemy cannot snatch it from you.
और शत्रु जो है आपसे वो खींच नहीं ले सकता है.
But he'll try and trick you into thinking you're going to be defeated. And then you give it up, what is yours.
लेकिन आपको गिराने का वो कोशिश करता है और आपको डराने का कोशिश करता है, फिर आप छोड़ देते हो.
So how is it with you?
तो मैं पूछता हूँ आपको, आपको लेकर कैसा है इस बारे को लेकर?
Do you lean on your own strength to receive things from God, to achieve things from God?
परमेश्वर से बातों को पाने के लिए क्या आप अपने सामर्थ्य में पाने की कोशिश करते हैं?
Or do you trust what God says in the Bible about you and your circumstances?
या आप बाइबल में जो प्रतिज्ञाएं लिखी है उसमें भरोसा करते हो?
You see, faith inherits the promises of God.
और विश्वास जो है विरासत हमारे पास लेकर आता है.
It's not military might, it's faith.
और यह मेरा जो ताकत है वो नहीं बल्कि विश्वास.
So Caleb had a spirit of faith.
तो कालेब के पास ऐसा विश्वास का आत्मा था.
The second thing we see here is that Caleb had a spirit of encouragement.
और दूसरी बात हम देखते हैं यहाँ पर कालेब के पास प्रोत्साहन देने का आत्मा था.
These are some of the encouraging words that Caleb brought to Israel.
और ये कुछ ऐसी उत्तेजनक बातें हैं जो इसराइलों के पास कालेब ने लाई.
He said, God will bring us into this land and give it to us.
और उसने कहा कि परमेश्वर हमें इस भूमि लेकर आएगा और वो हमें वो भूमि दे देगा.
Do not fear the people for the land, the people of the land, for they are bread for us.
और उस देश के लोगों को डरो नहीं क्योंकि वो तो हमारे लिए खाना है.
Their protection is removed from them.
और उनका जो सुरक्षा है उनके ऊपर से वो हटा दिया गया है.
You know, when you're facing a situation where God is calling you to do a step of faith, you really need an encourager there to help you make those steps.
और जब आपको कुछ करने के लिए परमेश्वर कहता है तो वहां पर आपको प्रोत्साहन देने वाला आपके साथ कोई चाहिए.
And that's what Caleb is doing. He's encouraging the people they can take hold of their promise of God.
और कालेब जो है यही बात करता है, लोगों को उत्साहित करता है परमेश्वर की बातों को लेकर.
I think Caleb's heart was just overflowing with encouragement and grace.
और वहां पर देखा जाए तो कालेब का जो हृदय था वो उस उत्साहवर्धक बातों से भरपूर उमड़ता रहा था.
He loved God's people and he wanted to help them.
और वो परमेश्वर के लोगों से उसने प्यार किया और उनको मदद करना चाहता था.
And because he's walking by faith, he's able to see something in the spiritual realm by faith.
और क्योंकि वो विश्वास में चल रहा है, वो विश्वास से ही आत्मिक बातों में देख रहा है, देख सकता है.
He sees their protection is removed. He's actually seeing it by faith.
और वो विश्वास से इस बात को समझ रहा है कि उनके ऊपर जो सुरक्षा है वो निकल दिया गया है, चली गई है सुरक्षा.
And so what he sees by faith, he brings to the people to encourage them.
और इसलिए जो विश्वास से वो बातों को देख रहा है, वो प्रोत्साहन के तौर पर अपने लोगों के पास लेकर आता है.
It's a bit like a prophetic gifting in many ways.
और जैसे कि उसके पास कोई भविष्यवाणी का वरदान है.
You see something in the spiritual realm and then you bring it to encourage people.
और आत्मिक क्षेत्र में आप कुछ देखते हैं और लोगों के लिए वो प्रोत्साहजनक बातें आप लाते हैं.
But the 10 spies were completely the opposite to Caleb. They had a spirit of discouragement.
लेकिन दूसरे जो 10 जासूस थे, उनका जो आत्मदायिक प्रकार से वो निराशाजनक था, निराशा का था.
You don't want to be around one of these 10 spies when you're about to step into the promises of God.
और जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पकड़ने वाले हैं, तो हम ऐसे वो निराशाजनक 10 लोगों के पास होना नहीं चाहते हैं.
They say we can't attack those people.
और उन्होंने कहा कि हम उन पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं.
They're stronger than we are.
और वो हमसे ज्यादा ताकतवर है.
The land devours those living in it.
और वो जो भूमि है, वो वहाँ रहने वाले लोगों को खा जाती है.
All the people we saw were of great size.
और हमने जिन लोगों को देखा, वो बड़े महामानव थे.
They were nearly as tall as Joe.
और जैसे जो ऊंचे कद का है, वैसे वो ऊंचे कद के थे.
And we seem like grasshoppers.
और उनके सामने हम तो टिड्डियों जैसे छोटे छोटे लगने लगे.
You don't want to be around people that are trying to discourage you like that.
और हम ऐसे लोगों के पास जो आपको निराशा लाने वाले हैं, उनके पास हम नहीं रहना चाहते हैं.
Here's the problem. The spies didn't see themselves as God's chosen people.
और मुश्किल ये है कि वो जासूसों ने नहीं देखा कि वो परमेश्वर के लोग हैं.
They still saw themselves as slaves in Egypt.
और उन्होंने ऐसा सोचा कि वो अभी भी मिस्र देश में गुलाम ही है.
You know, when Christians don't understand their new identity as God's sons,
और जब मसीही अपनी नई पहचान को नहीं समझ पाते हैं कि वो परमेश्वर के बेटा या बेटी है,
they remain slaves to their old identity and therefore slaves to sin.
तो फिर वो अपने पुराने जीवन को और पाप के गुलाम ही रहते हैं.
And a Christian that holds on to his or her old identity continually feels discouraged and fearful.
और इसलिए जो अपनी पुरानी पहचान को, जो मसीह अपनी पुरानी पहचान को पकड़े रखते हैं, वो हार ले लेते हैं और डर से भरे होते हैं.
In the book of Joshua, the Bible says that the 10 spies made the heart of the people melt.
और यहोशू के किताब में वहां पर उन 10 जासूसों को लेकर कहा है कि लोगों के हृदय जो है डर से पिघल गए.
You know, if you hang around a negative person, their spirit will infect you and create negativity in your life.
अगर आप ऐसे नकारात्मक बात करने वाले या नकारात्मक लोगों के करीब अगर रहेंगे, तो आपके अंदर भी वैसे ही बातें आएगी.
And the bad report of the spies affected the whole community.
और ये 10 लोगों ने जो बुरा खबर लाया या बुरा रिपोर्ट लाया, उसकी वजह से सारे इज़राइल के लोग एक प्रकार से डर गए.
It's a terrible thing because they had come out of captivity. They had seen God deliver them from Pharaoh and go across the Red Sea and defeat the Egyptians.
और यह एक बहुत ही अजीब स्थिति बात है, क्योंकि वो अभी समंदर पार करके वहां से बड़े चमत्कार से बाहर निकले थे, परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य को देखकर.
But in this moment of great inheritance, they actually start to rebel against God.
लेकिन यह एक ऐसा समय है जहां पर वो परमेश्वर से विद्रोह करने लगे.
They were physically on the edge of the land, but their minds were still in Egypt.
और वो भले वो नए देश के सीमा के ऊपर खड़े थे, लेकिन उनके मन जो थे पुराने मिस्र देश के ही थे.
You know, I believe that sometimes whole churches can miss an inheritance in their generation.
और कभी-कभी कलीसिया जो है उस पीढ़ी को लेकर ऐसी बातें में आ सकते हैं.
If they allow a culture of rumors and gossip and unbelief to spread.
और अगर हम चुगली और जैसे गड़बड़ी की बातें अगर हम उसमें भरोसा करेंगे तो.
But you know, when you understand that you are a son in God's house.
तो तुम्हें इस बात का ध्यान होना है कि तुम परमेश्वर के बेटे हो.
Your whole view of the world changes.
और तुम्हारा जो सारा देखने का नजरिया है वो पूरी तरह से बदल जाता है.
And when you realize I'm a son, you want to start encouraging other people around you.
और तुम इस बात का जब महसूस करते हो कि मैं बेटा हूं, तुम दूसरों को प्रोत्साहन करने के लिए आगे बढ़ते हो.
Sons encourage other sons in the house.
और घर में एक बेटा दूसरे बेटे को प्रोत्साहन देता है.
This is what the Bible says in Romans 8 verse 15.
और रोमियों के 8वें अध्याय के 15वें वचन में यह लिखा है.
For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear.
क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो.
But you have received the spirit of adoption as sons.
परंतु तुम्हें लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम कहते हैं हम बेटे हैं.
By whom we cry, Abba, Father.
और जिससे हम पुकारते हैं हे अब्बा हे पिता.
So today you are a son, you're not a slave. Amen.
तो आज आप हैं बेटा है या बेटी है आप.
It's glorious. It's about liberation from slavery and into freedom as God's children.
और परमेश्वर की संतान होने के नाते हम उन बातों से बाहर आ गए हैं, खुलेपन में आजाद हो गए.
And these stories in the Old Testament, they're acting out in a nation what happened at the cross when Jesus liberated us from the slavery of sin and brought us into the freedom of the sons of God.
और यह कहानियां जो है हमें उसी बात को प्रदर्शित करती है जिसे यीशु ने क्रूस पर अपना जीवन बलिदान करके हमें स्वतंत्र किया, हमें आजाद कर दिया है.
And when a church creates a culture of faith and encouragement.
और जब कलीसिया ऐसे उत्साह की बातें और विश्वास की बातों को लेकर आगे चलता है,
it builds an army fit for inheriting the promises of God.
और फिर वो एक सेना तैयार हो जाती है जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी है उसको पाने के लिए.
Paul says in 1 Thessalonians, therefore encourage one another and build one another up.
और इसलिए पौलुस लिखता है 1 थिसलुनियों के 5वें अध्याय के 11वें वचन में कि इसलिए एक दूसरे को प्रोत्साहन दो, एक दूसरे को उत्तेजना दो.
This is the spirit of a Christian.
और यह एक मसीही का आत्मा है.
Our identity is to encourage and build up.
और हमारी पहचान यह है कि हम दूसरों को प्रोत्साहन दें और दूसरों को बनाए.
It's your old identity to be negative and grumble.
और हमारा पुराना जो आदत है या पुरानी जो पहचान है वो कुड़कुड़ाना और नकारात्मक बातें करना.
We don't see Jesus grumbling and moaning.
और मैंने कभी नहीं देखा यीशु कभी शोक करता है या कुड़कुड़ाता है.
I can't imagine the disciples being with Jesus saying, "Oh dear, he's woken up in one of those moods again."
और
oh dear, Jesus woken up in one of those moods again.
और कभी चेलों ने ऐसा नहीं देखा यीशु अभी उठा है और चलो अभी उसका ऐसा मूड है.
Hey John, you didn't sleep very well last night. We better keep our distance for a while.
वो ठीक से नहीं सो पाया है तो उससे हम दूर ही रहे.
No, I tell you what, the disciples were so lifted up and encouraged and they believed when they were with Jesus they could change the world.
और वो इतने प्रोत्साहन पाए थे और इतने विश्वास से भरे थे कि उन्होंने विश्वास किया कि वो दुनिया को बदल देंगे.
And so can you.
और
you can change the world.
आप भी दुनिया को बदलने वाले हैं.
Because you're in Christ.
क्योंकि आप यीशु मसीह में
हो. You walk with him every day.
और आप हर दिन उसके साथ
चलते हैं.
वो आपके हृदय में है.
You have his words of eternal life.
और उसके वचन आपके हृदय में है जो प्रकाश चमकाते
हैं. And God has called you to bring the gospel of hope to Mumbai and the nations of the world.
और परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने के लिए.
And this is your new identity.
और यह तुम्हारी नई पहचान है.
Hallelujah.
Hallelujah.
So Caleb had a spirit of faith.
तो कैलब के पास विश्वास का आत्मा था.
He had a spirit of encouragement.
और उसके पास प्रोत्साहन देने का आत्मा था.
One last thing.
और आखिरी बात.
Caleb's spirit was loyal to leadership.
और कैलब का जो आत्मा था वो अगुवाई के साथ ईमानदारी से रहने का.
You see, Moses was God's anointed leader.
और मूसा जो था परमेश्वर से अभिषेक पाया हुआ अगुवा था.
I mean, quite uniquely, Moses spoke with God face to face. That's what the Bible says.
और एक अलग तरीके से मूसा जो है परमेश्वर से आमने सामने बात करता है.
And Moses' mission was to lead God's people out of slavery in Egypt and into the promised inheritance in Canaan.
और मूसा के लिए वो काम दिया गया था कि वो परमेश्वर के लोगों को वो वाचा की भूमि में लेकर आए.
And so Moses is really coming to the climax of his calling and destiny as a leader.
और जो बुलाहट थी उसके पास ये जो अगुवाईपन था मूसा का वो एकदम अपने उस ऊंचे समय पर आ पहुंचा है.
To lead these people into their promised land.
ताकि ये लोगों को वो उनकी प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाए.
Wow, this is what it's all about when God met with Moses originally.
और शुरुआत में जब परमेश्वर मूसा से मिला तब ये सारी बातों के लिए वो हुआ.
And in this moment, Moses needs loyal spies who will carry the promises of God in their heart like he carries in his heart.
और इसलिए अब इस समय में मूसा के पास ऐसे और अगुवे होना आवश्यक है जो उसके साथ ईमानदारी से रहे.
And these 12 spies, they speak to us about leadership as well.
और यह जो 12 जासूस है वो अगुवाओं के बारे में अगुओं के स्वभाव के बारे में भी हमसे बातें करते हैं.
Because these 12 spies, they're all leaders of their tribes.
और ये जो 12 लोग हैं वो अपने अपने जाति के मुख्य है अगुवे हैं.
So they would have understood how important family loyalty is.
और शायद उन्होंने इस बात को समझा होगा कि अपने परिवार के साथ कैसे उन्हें ईमानदारी से रहना है.
But tragically we find that 10 of the spies were so disloyal.
और मुश्किल की बात यह है कि वो जो 10 जासूस थे वो अपने उस बात से थोड़ा दूर रहे या ईमानदार नहीं रहे.
They're so disloyal that the people turn against Moses and want to overthrow him.
और वो इतने बुरे हो गए एक समय में कि वो मूसा को निकालकर बाहर निकालना चाहते थे.
It's a crazy moment. There's panic in the Israel camp.
और इसराइल में यहाँ पर एक ऐसा समय आया है कि बहुत ही उथल पुथल हो रही है.
This is what they came out of slavery for, to go into the promised land.
और वो अपने गुलामी से बाहर आ गए ताकि प्रतिज्ञा के देश में वहां पर जाए.
Surely the God who delivered them from Egypt is very easily able to deliver them into the land of Canaan.
और परमेश्वर ने उनको मिस्र देश से बाहर निकालकर कनान देश के लिए यहाँ पर लेकर आया.
But this is what the people said because of the spies' report.
लेकिन क्योंकि वो 10 जासूसों ने इस प्रकार से रिपोर्ट दिया लोग इस प्रकार से बातें करने लगे.
They said, "Let us choose a leader and go back to Egypt."
और उन्होंने कहा कि हम और एक अगवे को खोजते हैं और हम मिस्र देश में वापस चले जाते हैं.
Isn't that terrible?
और बहुत ही बुरा है.
And then a few verses later it says, then all the congregation said to stone them.
और फिर कुछ वचनों के बाद हम देखते हैं कि सब लोगों ने कहा कि हम उनको पत्थर से मार देंगे.
This is a terrible tragedy at this moment.
और यह बहुत ही दुखद घटना है ऐसे समय में.
And it's to do with leaders not carrying the heart of Moses here and the promises of God in their hearts.
और वहाँ पर ऐसे अगवे हैं जो मूसा के हृदय में जो बातें हैं उस अगवे के हृदय में जो बातें हैं उसको लेकर नहीं चल रहे हैं.
You know, if you're a leader here in the church, you need to carry the vision and the heart that the elders have.
और अगर आप यहाँ पर अगवे हैं तो प्राचीनों के हृदय में जो बातें हैं जो दर्शन है उनके पास उसे लेकर आपको चलना है.
The elders are relying on you to be loyal.
और प्राचीन जो है आपके ऊपर निर्भर रहते हैं कि आप ईमानदार रहे.
You see, there's something about loyalty to leadership that God highly values.
और एक ऐसी बात है जिसे परमेश्वर काफी महत्व देता है वो अगुओं के प्रति ईमानदारी.
Because it's an expression of God's heart and character.
क्योंकि यह जो बात है वो परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करती है.
You see, God appoints leaders in the house and he alone judges them in the end.
और परमेश्वर अगुओं को वहां पर खड़ा करता है और वो ही उनके ऊपर न्याय करता है.
So you see in the life of David, he's anointed to be the next king, but he doesn't lay a hand on Saul, he leaves it to God.
और देखो हम दाऊद के बारे में देखते हैं कि दाऊद जब राजा वहां पर बनता है तो वो शाऊल पर हाथ नहीं उठाता है.
And the Bible says that David was a man after God's own heart.
और शास्त्र में लिखा है कि दाऊद जो था परमेश्वर के हृदय जानने वाला व्यक्ति
था. So when we see David's loyalty to leadership, we realize that's the heart of God.
और जब हम दाऊद की इस प्रकार से ईमानदारी देखते हैं अगुओं के प्रति और हम जानते हैं कि परमेश्वर का हृदय ऐसा है.
We've just been through a time of transition in Jubilee where I've handed over to a younger leader.
और जुबली कलिसिया में उन्होंने अभी एक युवा व्यक्ति के हाथ में कलिसिया का कारोबार सौंप दिया है.
And we had to cast vision, we had to explain things, and sometimes we had to have important conversations with individuals who were a little unsure.
और कभी-कभी और वो समय के दौरान हमें लोगों के पास यह दर्शन लाने जरूरी था और कुछ लोगों से व्यक्तिगत तौर पर हमें बात करनी पड़ी।
But you know, the whole church has come with us on this journey.
क्योंकि पूरी कलीसिया जो है वो उस यात्रा पर अब है।
A time of transition is a critical time.
और यह जो स्थित्यंतर या परिवर्तन का जो समय है वो काफी महत्वपूर्ण समय होता है।
So in this period here at One Nation, are you going to be loyal to the eldership and the vision of the eldership in this?
तो यहाँ पर आप इस कलीसिया में जो आपके टीम है अगुओं की और प्राचीनों की, क्या आप उनसे ईमानदार रहेंगे?
Are you going to be like Caleb, standing with leadership when it really matters?
क्या आप ऐसे समय में जहां पर ज्यादा जरूरत है आप कालेब की तरह अपने अगुओं के साथ खड़े रहेंगे?
Or will you be like one of the 10 spies, quick to stone decisions that you don't like?
या आप उन 10 जासूसों की तरह होंगे कि पत्थर उठा के थोड़ा सा बुरा देखते हैं तो पत्थर उठा के मारने के लिए तैयार हो जाएंगे?
You see, here's the interesting thing about leadership.
और यहां पर अगुओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बात है।
It's not a matter of a leader being right or wrong.
और ऐसा नहीं है कि अगुआ सही है या गलत है।
It's not even about a leader being good or bad.
या ऐसा भी नहीं है कि अगुआ जो है ठीक है, अच्छा है या अच्छा नहीं है।
God will deal with those things himself.
और परमेश्वर उसका उस बात को संभाल लेगा।
It's about you being like God's son Jesus.
वो इस बात में मायने रखता है कि आप जो है परमेश्वर यीशु के बेटे की तरह आप वहां पर रहना।
Let me tell you one of the names of Jesus.
और एक यीशु का नाम जो है मैं आपको बताता हूं वो क्या है।
In Revelation 1.
और प्रकाशित वाक्य 1 में लिखा है,
John writes, grace and peace from Jesus Christ, the faithful witness.
और अनुग्रह और विश्वास उस यीशु के द्वारा जो विश्वास योग्य है।
Jesus was faithful.
और यीशु विश्वास योग्य था।
He was faithful to his father even on the cross.
वो अपने पिता के साथ विश्वास योग्य था यहां तक क्रूस पर मरने के समय भी।
He chose this mutual submission to his father's will in the most terrible of circumstances.
और ऐसे भयानक और कठिन समय में भी उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना सोच लिया।
And he was faithful to us.
और वो हमारे साथ भी विश्वास योग्य रहा।
Because the cross is about us coming to salvation.
क्योंकि वो क्रूस है वो हमें उद्धार तक पहुंचाने के लिए है।
Jesus is faithful to his father and he's faithful to you.
और यीशु अपने पिता के साथ विश्वास योग्य रहा और वो तुम्हारे साथ भी विश्वास योग्य है।
And you have the spirit of Jesus in you.
और तुम्हारे अंदर यीशु का आत्मा है।
You are called to be a faithful witness.
और आपको विश्वास से भरे हुए गवाह बनना है।
So let me conclude.
तो अंत में मैं आपको बताता हूं।
It's interesting that Caleb believed God and he did actually inherit the promised land 40 years later.
और यह सच है कि कालेब ने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा किया और 40 साल के बाद उसने उस विरासत को पा लिया।
He was 85 years old when he inherited.
और जब उसने उस विरासत को पा लिया वह 85 साल का था।
And Joshua inherited too.
और यहोशू ने भी उसको पाया।
And everybody else from that generation of 20 years and older, none of them inherited. They all died in the desert.
और उस पीढ़ी में जो 20 साल से बड़े थे, उनमें से कोई भी उस नई भूमि में नहीं आ पाया।
But Joshua, even in his old age, he's winning victories.
लेकिन यहोशू अपने ऐसे बुजुर्ग के समय में भी, बड़े आयु में भी उसने विजय को हासिल किया।
And incredibly, having finally gained his inheritance, he gives it to his daughter.
और बड़ी बात हम यहाँ ये देखते हैं कि वो विरासत पाने के बाद वो अपनी बेटी को दे देता है, सौंप देता है।
Joshua 15:19 says he gave her the upper springs and the lower springs.
और यहोशू के 15वें अध्याय में वहां पर लिखा है 19वें वचन में कि यहोशू ने वो ऊपर के झरने और नीचे के झरने अपनी बेटी को दे दिए।
And this fulfilled the scripture that we started with in Numbers 14:24.
और यह जो वचन है वो गिनती के अध्याय में हमने जो देखा था 14 के 24 में उसे यहाँ पर पूरा होते हुए हम देखते हैं.
Where God says, "I will bring him into the land into which he went, and his descendants shall possess it."
क्योंकि परमेश्वर ने वहाँ पर लिखा कि मैं तुम्हें उस प्रतिज्ञा की भूमि में लेकर आऊंगा और तुम्हारी अगली पीढ़ी वहाँ पर निवास करेगी.
So your inheritance is not just for you, it's for your descendants.
तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो विरासत है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि आपके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी है.
Your faithfulness affects what happens to your children.
और आपकी विश्वास योग्यता का प्रभाव अपने बच्चों पर और उनके बच्चों पर होता है.
And Caleb points us again to Jesus in this.
और इसमें कालेब जो है हमें यीशु को दर्शाता है.
Jesus won a great victory over sin and death on the cross.
और यीशु ने पाप पर बड़ा विजय हासिल किया.
And now he invites his descendants, you and I, to possess his inheritance.
और अब वो हमें बुला रहा है उसकी विरासत पाने के लिए.
Caleb shows us Jesus.
और काले एक प्रकार से हमें यीशु दिखाता है.
Jesus takes us out of slavery to sin and brings us into a land of freedom as sons and daughters.
और यीशु हमें उस पाप के दासत्व से बाहर निकालकर हमें एक आजादी और स्वतंत्रता के जीवन में लेकर आता है.
He takes away our shame and gives us honor.
और वो हमारी लज्जा को निकालकर हमें आदर देता है.
So why not become a son or a daughter today?
तो क्यों ना आप यीशु का बेटा या बेटी बन जाए.
If you want to respond and say, "Jesus, I want to receive you. I want to know this love," why don't you just raise your hand?
और अगर आप कहना चाहते हैं कि यीशु, मैं तुम्हारा बेटा या बेटी बनना चाहता हूं, तो क्यों ना आप अपना हाथ ऊंचा करिए.
Great. It's a lot of people.
बहुत सारे लोग हैं.
Michael, lead them in a prayer.
क्यों ना आप जहां है वहां खड़े हो जाए और मेरे पीछे बोलिए, मैं आपको मदद करता हूं. मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए. अपनी आंखें बंद रखें. सब लोग आंखें बंद रखें. एवरीबडी क्लोज आईज. प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करता हूं कि तुम मेरे लिए इस दुनिया में आए. तुमने अपना शरीर क्रूस पर चढ़ाया और मेरे पापों को लेकर मर गए. मेरे पुराने जीवन से और मेरे पापों से तुमने मुझे आजाद किया. मरने के बाद तुम्हें गाड़ा गया लेकिन तीसरे दिन तुम फिर से जिंदा हुए. मैं इस बात में विश्वास करता हूं प्रभु यीशु, मैं तुम्हें कहता हूं मेरे जीवन में आओ, मुझे मार्गदर्शन करो और मुझे मदद करो. यीशु, आपके नाम से मैं मांगता हूं. आमेन, आमेन.
Why don't we clap those people? Let's all clap. Okay, I finished what I want to say.
मैंने जो कहना था वो अब पूरा किया है.
I just want to pray over you as a church just for 1 minute.
और एक मिनट के लिए मैं.
Why don't we all stand together?
आइए हम सब खड़े हो जाएं. मैं प्रार्थना करने वाला हूँ आप सब के लिए.
You have many promises in God here in One Nation.
और One Nation में आपके पास बहुत सारी ऐसी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने आपको दी है.
You have a great inheritance.
और आपके लिए बड़ी विरासत रखी है.
And the inheritance is for now. It's for your lifetime.
और वो अब के लिए है, आपके जीवन भर के लिए है.
There's inheritance stored in heaven, and there's inheritance for us now.
और स्वर्ग में आपके लिए विरासत रखी है और अभी के लिए आपके पास विरासत रखी है.
Nobody can take the inheritance in heaven.
और स्वर्ग का जो विरासत है वो अभी कोई नहीं ले सकता.
But we're called to walk by faith now to get hold of the inheritance here.
लेकिन यहाँ पर जो विरासत, इस जीवन के लिए जो विरासत परमेश्वर ने रखी है,
let's just raise our hands to God.
विश्वास से उसे को पाना है. आइए अपने हाथों को ऊंचा करिए, परमेश्वर की ओर बढ़ाएं.
Father, I pray over One Nation.
पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ वन नेशन के ऊपर.
आई थैंक यू फॉर एवरी लाइफ हियर.
और हर एक जीवन के लिए मैं यहाँ धन्यवाद करता हूँ.
एवरी वंडरफुल पर्सन, मैन, वुमन एंड चाइल्ड.
हर एक उन अद्भुत लोगों के लिए, पुरुष हो, स्त्री हो या बच्चे हो.
God, I pray as a church that we will walk by faith.
और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम विश्वास से आगे चलेंगे.
I pray as a church we will be encouragers as we see what God is doing in the spiritual realm.
और मैं प्रार्थना करता हूँ कि लोग जो है एक दूसरे को प्रोत्साहन करेंगे यह बातें देखते हुए परमेश्वर जो कर रहा है.
And I pray we will be like Jesus, the faithful witness.
और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम वो यीशु के जैसे विश्वास योग्य बनेंगे.
God, bring one nation into all that you have promised, into all her inheritance.
और प्रभु यीशु इस कलीसिया को उनकी सारी उन प्रतिज्ञाओं पे लेकर आना.
इन जीसस नेम,
यीशु के नाम में,
आमेन,
आमेन.
थैंक यू रॉडनी.